आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। हिंदी भाषा के साहित्यकारों की चर्चा में आज बात प्रकृति के सुकुमार कवि, हिंदी साहित्य में छायावाद के स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के कौसानी जिले में। और कौसानी जिले की प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता ने पंत जी के कवि मन को शब्दों का रूप दे दिया। प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्र प्रेम, रहस्यवाद, वेदना, ये सब उनकी कविताओं की विशेषता बनी है। उनकी लेखनी ने छायावाद को एक नया रास्ता दिखाया, इसलिए उनकी रचना पल्लव को छायावाद का जैसे घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत ने मानव को सुंदरतम कृति कहा। उन्हीं के शब्दों में, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उनका मानना था कि देश, जाति, वर्ग में विभाजित मनुष्य की केवल मानव के रूप में ही पहचान हो। जानते हैं, भारत में जब टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ तो उसे भारतीय नाम यानी दूरदर्शन पंत जी ने ही दिया था, और भारतीय फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन का नामकरण भी उन्होंने ही किया था। पंत जी के बारे में आज बात की है भारत के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर हरीश नवल जी से, जिन्हें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत सरकार के गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार के अलावा 13 राष्ट्रीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उनके स्वयं के साहित्य पर अब तक 10 छात्रों ने PhD भी प्राप्त की है। पंत समेत न जाने कितने ही साहित्यकारों के साथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से समय बिताने का मौका मिला। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बात करने के लिए उनसे बेहतर कौन होता, तो आइए उन्हीं से जानते हैं पंत जी की रचना शैली के बारे में। हरीश जी, सुमित्रा नंदन पंत वो एक कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, निबंधकार भी हैं, संपादक भी हैं, यानी उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन अगर हम उनके कविताओं के ऊपर ही बात करें, उनके कवि मन की बात करें, तो प्राकृतिक सौंदर्य का जो एहसास उनकी रचनाओं को पढ़ने में होता है, मुझे लगता है शायद वो कहीं और नहीं मिलता।
बिल्कुल ठीक। अब वो गोसाई दत्त थे, और चूंकि वो रामायण में लक्ष्मण को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने अपना नाम जो है वो बदल करके सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। उन्हें लगा कि मेरी माँ का नाम सुमित्रा है, तो मुझे यही नाम रखना है। देखिए, 20 मई 1900 को उनका जन्म हुआ
जी,
और 28 दिसंबर 1977 को संसार से विदा हो गए, यानी इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनका नाम धूमिल नहीं हुआ। और उनकी कविता आज भी कोर्स बुक में है, वो 5वीं कक्षा हो, 8वीं हो, 12वीं हो, BA हो, MA हो, या PhD पर हो या DLit हो, पंत जो है वो बराबर वैसे ही है जैसे छायावाद के अन्य कवि भी हैं। अब उनका जो आपने बात की अभी प्रकृति की, तो प्रकृति के तो उसके तेरे थे ही वो, ये उनके लिए ये विशेषण दिया जाता है कि वे प्रकृति के सुकुमार कवि, और सुकुमार भी है जब आप उनको देखते हैं, उनकी जो चित्र छपते हैं, जो रूप रंग उनका था, तो उन्होंने जब लिखते हैं ना, स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब भोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती है भू नभ के छोर।
क्या
तो जो प्रकृति के बारे में जब वो लिखते हैं, तो वो जो उनकी भाषा की बात करते हैं, तो उनमें शब्द मैत्री और अभूतपूर्व लय का संगम है। संगीत का एक नाद है, जैसा कि अन्य भी है। निराला में हम कह सकते हैं कुछ और प्रकार का, लेकिन बाकी जो प्रसाद जी हैं, महादेवी हैं, पंत हैं, इनमें संगीत की लय कुछ ज्यादा है। और मैं देखता हूँ कि पंत के शब्द जो होते हैं वो छोटे होते हैं और असंयुक्त वर्ण वाले होते हैं। उन्होंने पल्लव की भूमिका में लिखा था
जी,
उन्होंने लिखा था कि कवि बोली की कविता में क्रियाओं विशेषतः संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग कुशलता पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो कविता का स्वर शिथिल पड़ जाता है। जहां तक हो सके इन्हें निकाल देना चाहिए, इसका प्रयोग है का प्रयोग व्यर्थ ही होता है। अब यदि ही अपनी अपनी मान्यता है और उन्होंने इसको काफी हद तक किया भी, और वो जो विशेषण लगाते हैं अपनी भाषा में, और विशेषण भी कैसे हैं, देखिए ना, मूर्छित आतप, तुतला भय, तुमुल तम, गंध गुंजित, नील झंकार, तो ये यानी विशेषण बनाते भी थे वो।
हाँ।
शायबाद के ही बनाते हैं, वैसे तो प्राय सभी साहित्यकार भाषागत प्रयोग करते हैं और कई शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है कि जब हम सुनते हैं मूर्छित आतप, तो कैसे प्रकृति को ही मानवीकृत भी कर देते हैं वो, जो चीजें उनको मूर्त के रूप में ले लेते हैं। तुमुल तम, तुतला भय, अब भय कैसे तुतला हो सकता है, तो वो हमें वो देखना पड़ता है कि इमेज क्या बन रही है, बिंब क्या बन रहे हैं, तो और बिंब के पीछे क्या प्रतीक को देना चाहते हैं, तो जो इमेजेस और सिंबल का जो एक क्रीड़ा है वो उनके काव्य में दिखती है।
यानी
और
जी, जैसे आप बता रहे हैं कि अपनी लेखनी से वो मानवीयकरण इस तरह कि कोई भी वस्तु है उसके साथ में एक बड़ा ही संवेदनशील संबंध बनवा देते हैं हमारा।
हाँ, वो है ना कि चूंकि छायावादियों का जो स्वर था वो आप भली बात ही जानती हैं
जी,
कि वो पुरुष और प्रकृति का जो संबंध है उसको लेकर के, और जो अव्यक्त है और जो छिपा हुआ है या जिसका रहस्य है
जी,
उसके बारे में ये सभी कविगण कहते थे, तो इनको रहस्यवादी भी कहा जाता था।
हाँ,
तो वो जो शैली शेक्सपियर वगैरह लिखते थे मिस्टिज्म से, वर्ड्सवर्थ इत्यादि, तो वहां से रहस्यवाद भी आरंभ हुआ और बाद में इनको स्वतंत्रतावादी भी कहा गया, तो लेकिन स्वतंत्रतावादी, और बाद में एक नाम आ गया जब मुकुटधर पांडे जी ने लिखा इनको एक निबंध, तब वो छायावादी हो गए। तो खैर, पंत सुकुमार हैं, चितेरे हैं, अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना।
जी,
और उनकी जो बादल कविता है या जो परिवर्तन है, ऐसी कविताएं जो बहुत लंबी भी हैं, दूर तक जाती हैं, वो जो कहते हैं, जो आप बात अभी कर रही थी मानवीकरण की, उसमें भी आएगा। भूमि गर्भ में छिपे विहंग से फैला कोमल रोमिल पंख, हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते सांस छुड़ा जड़ पंख, विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप धर भर नभ अंक, हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर्मे निशंक। तो ये बादल को लेकर के उन्होंने कितना कुछ कह दिया।
वो बहुत ही यथार्थवादी भी रहे और बड़ा ही उन्होंने दार्शनिक दृष्टिकोण रखा अपनी रचनाओं में। जी,
बल्कि दर्शन भी रखा, और जो युगांत के बाद जो उनका नया रूप दिखता है वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण उसमें साफ नजर आता है।
हाँ।
युगवाणी और ग्राम्य तक जाकर ये बड़ा और भी आ गया था, जब वो कहते हैं खुल गए छंद के बंध, प्रास के रजत पाश अब गीत मुक्त, ओ युगवाणी बहती अयास, बन गए कलात्मक जगत के रूप नाम, जीवन संघर्षण देता सुख लगता ललाम। तो वो उसमें अनिता जी, एक विशेष बात है कि जो जिस तरह से प्रगतिवादी चिंतन आया उनमें, और ये आ भी जाता है सभी में ही, कि सब चाहते हैं प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं लोग, और ताज को देख करके, ताजमहल के सौंदर्य को लेकर दुनिया भर के जो कवि हैं उन्होंने लिखा जब भी उनको मौका मिला
जी।
और बहुत इसकी स्तुति गान हुई, शाहजहां की मोहब्बत, मुमताज का सौंदर्य, और फिर ताजमहल की अपनी खूबसूरती जो आज भी पूरी दुनिया में आश्चर्य के रूप में है
जी।
तो उस ताज को पंत ने जो लिखा वो बहुत ही ध्यान देने योग्य और बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, उन्हें लगा, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में, संगमरमर में, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर आस विहीन रहे जीवित जन, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। तो एक तरह से कड़े शब्दों में कहा, कोमल शब्दावली इस्तेमाल करते रहे। तो छायावादी कवियों में जो जो सांगीतिक साधना उनकी है, मेरा मतलब शब्दों में जो गीत विधान लय उत्पन्न करता है। देखिए 1920 से पंत जो है वो जनता में आने लगे थे और लोकप्रिय हो रहे थे, 20 वर्ष के ही थे कुल। तो 22 में सरस्वती पत्रिका के विद्वान थे शिवाधार पांडे, तो उन्होंने लिखा था, पंत अपनी कविता में भाषा को सुंदर भाव से बजाता है, संगीत को उंगलियों पर नचाता है, मानो शब्दों को फूलों की तरह सूंघ सूंघ उससे मनमाना मकरंद चूसता है और कविता में मधु उंडेलता है। वो बड़े प्यार से लिखा है उसको, तू संबोधित कर। और खड़ी बोली को उन्होंने एक सुदृढ़ आधार दिया, क्योंकि जो भाषा और शब्द सौंदर्य की दृष्टि से उतनी सुबोध या सुगम नहीं थी। लेकिन जब छायावादी काव्य शुरू हुआ तो पंत निराला इत्यादि ने उस भाषा को बदला, उसमें तत्सम शब्दावली लाकर, जिसे हम संस्कृत निष्ठ कह सकते हैं, तो उस शब्दावली को लाए और कुछ जो शब्द बनाए वो भी संस्कृत सम शब्द ही उन्होंने बनाए युग्मों के आधार पर।
जी, और उसी तरह से पंत जी ने गद्य में भी बहुत कुछ अनोखे ही कार्य किए हैं, शकुंतला हो या ज्योत्सना हो। जी, बहु प्रतिभा वाले वो एक व्यक्तित्व थे हिंदी साहित्य के, और इसीलिए वो एक स्तंभ हैं।
जी जी, अब वीणा से जो उन्होंने आरंभ किया
जी,
तो वीणा है, ग्रंथी है, गुंजन है, युगांत है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, फिर एक उनका कला और बूढ़ा चांद बिल्कुल अलग
जी
लोकायतन।
हाँ, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था।
हाँ, और ज्ञानपीठ भी हुआ
चिदंबरा के लिए। जी,
अब मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। SBS हिंदी पर मैं हूं आपके साथ अनीता बरार, और हम बातें कर रहे हैं जाने माने साहित्यकार हरीश नवल जी के साथ, हिंदी के जाने माने छायावादी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। हरीश जी सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं।
ये बात है 1976 की, यानी पंत जी के देहावसान से एक वर्ष पूर्व की। मैं, मेरे बहनोई रहते थे इलाहाबाद में, तो मैं उनको मिलने के लिए गया। हम लोग नेपाल की तरफ से आ रहे थे, तो रास्ते में हमने ब्रेक जर्नी की थी
जी।
तो जब इलाहाबाद, आपको लगता है कि आप साहित्यिक नगरी में आए हैं तो क्यों ना सबसे मिला जाए। तो मैंने पूछा डाकघर में जाकर के कि जी मैं जैसे पंत जी को मिलना चाहता हूँ, महादेवी जी को मिलना चाहता हूँ, और राम कुमार वर्मा मिलना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे रघुवंशी को मिलना चाहता हूँ। जब ये नाम लिए तो जो जो डाकघरे बैठे थे कहते आप दिल्ली में नहीं, कहाँ से आए? मैंने कहा दिल्ली से। कहते आप दिल्ली में नहीं है, आप प्रयाग में है। आपको कुछ नहीं कहना, आप रिक्शा वाले से कहिए कि भैया राम कुमार वर्मा के घर चलो, वो चल पड़ेगा। आप उनसे कहो कि पंत चल पड़ेगा। तो मेरे लिए इसलिए आश्चर्य का विषय था अनिता जी, कि मैं जनेंद्र मिलने जाता था स्कूल के समय से ही, वो हमारे स्कूल के पास ही रहते थे। तो दरियागंज में बहुत से लोग जानते नहीं थे कि यहाँ हिंदी का इतना बड़ा लेखक, और यहाँ वो कह रहे हैं कि आप पोस्ट मास्टर साहब कि आप रिक्शा वाले को कहिए। मैं रघुवंश जी का घर पास पड़ता था, तो मैं पहले रघुवंश जी के घर गया। तो मैंने कहा जी मैं यहाँ से जल्दी निकलूंगा, पंत जी के घर जाना चाहता हूँ। कहते चलो हम भी चलते हैं। अब डॉक्टर रघुवंश और मैं रिक्शा में बैठ करके वहां गए। जब हम वहां पहुंचे तो वो बाहर ही खड़े थे। वहां देखा तो एकदम श्रद्धा का भाव तो उमड़ा ही था। मन कर रहा था कि रघुवंश जी से गली कूद के चला जाओ, उनके चरण छू लो।
एक अलग ही अनुभव होता है वो। बिल्कुल।
तो अंदर आ गए और आकर के बैठे, तो उन्होंने पूछा रघुवंशी ने कहा भी ये आपसे मिलना चाहते थे, ये कुछ लिखते भी हैं और नए नए लेक्चरर हैं हिंदी के। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो और कुछ नहीं मैंने पूछा। मैं देखता रहा कि दोनों विद्वान आचार्य रघुवंशी और वो आपस में बात कर रहे थे। तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज आई। जैसे कार रुकी तो कार की ध्वनि से पहचान गए पंत जी। उन्होंने कहा अरे अरे अमृत आए हैं, अमृत आए हैं।
अच्छा,
तो वो एक गए तो अमृत राय जी आए थे। तो अमृत राय जी जब आए ये उनको तो सही पहचानते थे पर वो मुझे ही पहचानते थे।
अच्छा,
वो विश्व हिंदी सम्मेलन हम उनसे मिले थे तो वो थोड़ा सा पहचानते थे। तो आए तो मिले और उसके बाद जो बातचीत चली है तो वो ऐसी बातचीत की उसमें फिर वो छोटे जिनको सिंगाड़ा कहते हैं ना समोसे जैसे छोटे वाले वो थे जब दिए तो वो किस तरह से शिकंजवी के साथ खुद परोस रहे थे। और मैं तो बस क्या कहूँ, क्या दिल में था, क्या मेरी आंखों में था, क्या मेरे मन में था कि मैंने कहा देखिए ये है एक बड़ा कवि, महान कवि, और तीन लोग मुझे एक साथ मिले।
आपके पास में तो बहुत सारे संस्मरण हैं और बहुत सौभाग्यवान हैं आपकी, आपको एक से बढ़कर एक साहित्यकारों का आपको साथ मिला है, आपको उनसे कुछ सीखने को भी मिला है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना तो बहुत ही मुश्किल होता है।
देखिए ना जैसे उनकी एक जो भावगत अंश उसका जो ध्यान आ रहा है जब वो कहते हैं जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बढ़ते हैं दुख सुख से और सुख दुख से। इसके कितने ही अर्थ लग सकते हैं
जी।
और कितनी कितनी स्तरों पर आप इसको सोच सकते हैं कि आप इन पर जुगाली कर सकते हैं हम लोग भैया ये क्या कहना चाहते हैं। तो जब कविता के इतने अर्थ निकल रहे हो इसलिए ऑब्वियस ही हो जाता है कि वो लोग कितने बड़े कवि। और एक बात अनिता जी और बताऊं जो आपने मेरे सौभाग्य की बात की इसमें कोई संदेह नहीं, इससे एक लाभ और भी मुझे हुआ कि जब इन लोगों से इतना मिला हूं इतने बड़े साहित्यकारों से तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि अभी तो मेरा साहित्यकार शिशु है।
वो बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूंगी हरीश जी, और उम्मीद करूंगी कि भविष्य में और साहित्यकारों के बारे में भी आपसे कभी कभी मैं बातचीत कर सकूं और आपके अनुभव से हम भी कुछ अनुभव ले सकें।
बिल्कुल, देखिए क्या है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर के इतने बरसों से हिंदी का इतना प्रचार प्रसार कर रही है और सबको साहित्य में आप बना देती है, आपके कार्यक्रम इतने प्रसिद्ध और इतने अच्छे मूल्यवान, तो मैं तो बल्कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आपके रेडियो के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के वासियों को या जो भी सुन रहे हैं उनको मैं अपनी कुछ बात कह सका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।